जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा शील प्रभु पदा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद पांच और अध्याय पांचवा श्लोक क्रमांक छः एवं मना कर्म वशं प्रयुक्ते एवं मना कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावत् यामि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत् एवं मनं कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावत्यामि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावत्मियानि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते यमाने प्रीतिर्न यावत्यामि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते तीर्ण यावत्यामि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या प्रीतिर्न यावत्यामि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् नमे मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मान मदुयमाने प्रीतिर्न यावत्यामि वासुदेवे चते देहयोगेन तावत् एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावत्यामि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्
इसका अर्थ इस प्रकार है शब्दशः एवं इस प्रकार मनः मन कर्मवशं कर्म के वशभूत प्रयुक्ते कार्यकर्ता अविद्या अविद्या अथवा अज्ञान से आत्मनि जब जीवात्मा उपधीयमाने आच्छादित रहता है प्रीति ही प्रेम न नहीं यावत जब तक मई मुझ वासुदेवे वासुदेव अथवा श्री कृष्ण में न नहीं मुच्यते छुटकारा पाता है देह योगेन भौतिक देह के संपर्क से तावत तब तक अनुवाद जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह न तो आत्मा को और न परम आत्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशभूत रहता है अंततः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे बारंबार देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब मन सकाम कर्म से दूषित रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्गलोक तक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर घूमता रहता है, किंतु जब तक वह श्री भगवान के भक्त गुरु के संपर्क में नहीं आता तब तक वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। भगवान वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में 19वां श्लोक में पुष्टि हुई है कि वासुदेवः सर्वमिति न स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों तक कष्ट भोगकर मनुष्य भगवान वासुदेव के चरण कमल में शरण लेता है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19वां अध्याय और 191वां श्लोक। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि दैव योग से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो वह गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ होता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदापि स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं सागरजातं रघुलिता रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद और अध्याय पांच के छठवां जो श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अध्याय का थोड़ा सा परिचय इस प्रकार है कि वृषभ देव जो है, भगवान वृषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो जब वे थोड़ा सा पीछे के जो कुछ ऐसा ही कि एक बार भगवान वृषभ देव भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर ब्रह्मावर्त नामक एक देश पहुंचते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि विद्वान ब्राह्मणों के सभा में उनके जो पुत्र है उनको वहां पर देखते हैं और सभी पुत्र जो है वहां पर ब्राह्मणों का जो है उपदेश सुनते रहते हैं। उस सभा में भगवान वृषभ देव का आगमन होता है और वो अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, जिससे कि उसका उद्देश्य यही रहता है कि उनके जो पुत्र है भविष्य में अच्छी तरह से भारतवर्ष पे राज्य करे। और यही जो है वृषभ देव के जो उपदेश जो है आगे के जो अध्याय है उसके अंदर आ जाता है। उनका एक ही में उद्देश्य यही है कि सब जो है, अगर राजा अगर भक्त रहे, भगवान का भक्त रहेगा, तो सीधी सी बात है कि प्रजा भी जो है, जनता भी जो है भगवान की भक्त हो सकती है। तो वो इस प्रकार दर्शाते हैं कि अगर ये भविष्य में उनके पुत्र जो है राज परिवार से आते हैं और राज परिवार से आने के वजह से अगर वो अच्छी तरह से प्रजा के ऊपर नीति से अगर राज्य करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जनता भी उसी प्रकार नीति से, धर्म से रहेगी। तो वृषभ देव जो है अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भौतिक जीवन जो है उसके बारे में बहुत एकदम विस्तृत वर्णन करते हैं कि भौतिक जीवन कैसा है, भौतिक जीवन में किस प्रकार से बाधाएं आती है और किस प्रकार हमें ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो उनका जो शुरुआत के जो कुछ श्लोक है वो जो उपदेश देते हैं, तो पहले ही इसमें बताते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन अगर जीना है तो किस प्रकार नहीं जीना चाहिए। जैसे कि वो एक उपाधि देते हैं कि स्वान और सुअर, इस प्रकार से सिर्फ आहार निद्रा और भय और मैथुन पशु के तुल्य जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु जो है और मनुष्य इसमें अंतर है। और यही अंतर है कि मनुष्य को बुद्धि दी हुई है और बुद्धि के कारण वो ये जान सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अगर भौतिक इच्छाएं अगर बढ़ाते रहे तो सीधी सी बात है पशुतुल्य हमारा जीवन भी हो सकता है। जैसे कि पशु को कोई कष्ट करना नहीं पड़ता है, वो तो आराम से अपनी जिंदगी जो है बिना सायास थोड़ा सा खाने के लिए मेहनत करता है और आराम से पड़ा रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आइसलैंड में जो भालू वगैरह रहते हैं, खाते हैं एक बार और छः छः महीने आराम करते हैं, कुछ उसको चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सबसे छोटा अगर पेट अगर रहे तो आदमी का रहता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कष्ट करने वाला, और पेट उस हिसाब से अगर छोटा है तो आदमी, तो वो इतना मेहनत करता है और किस लिए, कि खाली पेट भरने के लिए, भरण पोषण के लिए, मेरा होना चाहिए, मेरा परिवार का होना चाहिए, मेरे पुत्र का होना चाहिए और इसके अलावा और कुछ देखता नहीं है। तो वृषभ देव यहाँ पर अपने पुत्रों को यही बताते हैं कि ऐसा जीवन जो है ये निरर्थक है, ऐसा जीवन जो है मनुष्य के लिए नहीं है, वो तो पशुओं के लिए है। इसलिए वो उपाधि से बताते हैं कि ये जो है किस प्रकार है कि सुअर और स्वान, इस प्रकार का जीवन जो है नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक जो आगे जो इंद्रिय तृप्ति जो है कि दिन रात परिश्रम करता है मनुष्य जो है, कर्मी आदमी जो है इंसान, तो दिन रात मेहनत करता है और मेहनत के बाद जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से हमारी जो नगरी जो है मुंबई नगरी, तो बताया जाता है कि कुछ लोग जो है सवेरे रात के टाइम उठते हैं, यानी कि 3 बजे 4 बजे सवेरे सवेरे होते उठेंगे, फिर स्नान वगैरह करके वो ड्यूटी जाते हैं, 4-5 घंटा उनकी जो है जो सफ़र जो है ट्रैवलिंग में निकल जाता है, और उसके बाद कुछ मेहनत करने के बाद वापस वो घर जाते हैं तो फिर अंधेरा पड़ा रहता है, यानी दिन भर जो है परिश्रम करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जीवन जो है, यानी कि उसको कुछ जीवन के बारे का अगर मतलब है खाली वही कर उसको अगर पूछे तो खाली जीवन का महत्व है, खाली उसका महीने का आखिर का जो पेमेंट आता है उसके बारे में वो तुलना करेगा कि बस जीवन का क्या है, वो जीवन का मतलब या जीवन का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा पैसा कमाना, और ज़्यादा पैसा कमाने से क्या होगा, वो तो कभी उसका एंजॉय करता नहीं है, उसका एंजॉय कभी करता नहीं है। एंजॉय कौन करता है, उसके परिवार वाले सब करेंगे, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो घर वाले भी एंजॉय किस प्रकार के करते हैं, वही खाना पीना और सोना बस, इसके अलावा जो कि उद्देश्य जीवन का क्या है वो उनको मालूम नहीं है। और ऋषभदेव आगे बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा जो व्यक्ति है तो भवबंधन से कभी मुक्त हो सकता है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत जो महापुरुष है अर्थात गुरु, उसको अगर वो शरण जाता है या उस शरणागति भाव से अगर वो जाता है तो क्या हो सकता है कि उसकी मुक्ति के मार्ग जो है खुल जाते हैं। और जब ऐसे जो मनुष्य जो है भौतिक जीवन में लिप्त जो है इंद्रिय तृप्ति को ही क्या करता है, अपना जीवन का लक्ष्य मानता है, और जीवन का लक्ष्य मानने के बाद क्या होगा, वही होगा कि जिस प्रकार मैं बताया कि जिस प्रकार पशु रहते हैं उसी प्रकार वो जीवन का लक्ष्य मानता है और उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। तो हम देखते हैं इस श्लोक में प्रभुपाद बहुत बताते हैं कि एक सकाम कर्मी जो व्यक्ति है किस प्रकार रहता है, यानी कि जैसा कि तमोगुण से वो आच्छादित रहता है, यानी कि बताया कि तमोगुण से वो आच्छादित रहता है जीवात्मा, जब भी जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो क्या होता है उससे, एक तो अगर वो कुछ कर्म भी करता है तो फल की अपेक्षा ही देखता है कि मुझे उसमें से क्या मिलेगा। दूसरी बात यह कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो क्या रहता है, जीरो रहता है, अज्ञानी रहता है। उसको क्या अगर किसी ने बोला कि कुछ इसके अलावा भी कुछ है तो वो मानने को तैयार नहीं होता। तीसरी बात यह है कि अगर उसका पोजिशन है, जैसा कि वो कोई कंपनी में अगर रहता है तो कोई पद पर है, तो पद पर होने के बाद उसको ऐसी हर बार एक मन में एक जिज्ञासा होती है, एक इच्छा ही रहती है, और उसके लिए वो मेहनत करता है। जैसे कि कोई अगर कोई बड़े बड़े जो कॉरपोरेट कंपनियां रहती है, और कॉरपोरेट कंपनी में क्या होता है, एग्ज़ाम रहती है, इंटरनल एग्ज़ाम रहती है डिपार्टमेंट जैसी, तो वो मेहनत करता है उसके लिए कि और आगे का पद उसको मिले। अगर क्लार्क है तो मैनेजर का पोस्ट, सीनियर क्लार्क का अगर मुझे मिलेगा, सीनियर क्लास से मुझे असिस्टेंट मैनेजर मिलेगा, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, उसकी जो सोच है उसी प्रकार रहती है। इसके पीछे का क्या रहता है कि अगर मेरी पोस्ट अगर बढ़ेगी, मेरी उन्नति होगी, तो क्या होगा, मुझे आनंद जो है और आनंद की परिभाषा जो है उसकी वहां पर बदल जाती है। और अगर वो नहीं है तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसके बारे में ज्यादातर सोचता है कि मुझे अगर सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, तो मुझे सोशली भी मैं कैसा होना चाहिए, लोग मुझे जानना चाहिए, यानी कि मैं क्या करूँ, कुछ लोगों का भला करूँ। अगर मेरे पास कुछ लक्ष्मी है, पैसा है, तो मैं लोगों को थोड़ा सा मदद करूँ, तो इस प्रकार से रहते हैं, यानी कि। और तीसरा एक है, ये सब करने का कारण ये है कि उसकी आर्थिक स्थिति जो है ये क्या करे, मजबूत करने की उसकी कोशिश रहती है। और अगर वो कर्मकांड के अंदर अगर आता है, कर्मकांड अगर जानता है, अगर उसके अंदर भी अगर कुछ करता है कि, तो उसमें यही ढूंढता है कि मुझे किस प्रकार मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, सुधर यानी कि अच्छी हो जाए स्थिति। जैसे कि ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि अनेक देवताएं रहती है, उसके बारे में वो अनुष्ठान करता है, पूजा अर्चा करता है। जैसा कि कर्मकांड में बताया है कि अनेक देवताओं के अनेक जो अलग अलग देवता की अगर पूजा की तो उस प्रकार से उनको फल मिलता है। अगर पत्नी चाहिए तो पार्वती की है, अच्छा पति है चाहिए तो शिवजी की है, शिवजी की पूजा करे। अगर तंत्र मंत्र का अगर उसको कुछ करना है तो वो भूत प्रेत आदि जो जीव जो योनि है उसकी वो पूजा में लिप्त रहता है। उसके पीछे का कारण एक ही है कि अच्छी तरह से उसका पोजीशन जो है वो बढ़े। और कर्मकांड में अगर उच्चतर उसको पता भी चले कि क्या है, कि उसके आगे नहीं जाता है, उसका कारण क्या है, वो खाली इतना ही सोचेगा कि मेरा जो आनंद जो है किसमें बढ़ेगा, सर्वोत्तम आनंद किसमें, स्वर्गलोक में है, तो वही वो सोचता रहे कि स्वर्गलोक प्राप्त करने की इच्छा धारण करेगा वो। तो इस प्रकार से है। और क्या है, भौतिक सुख को, जो भौतिक सुख है उसको ही वो सच्चा सुख मानता है वो, यानी कि एक्चुअली भ्रम है वो। जैसा कि जीवन के, क्योंकि ये कारण क्यों है ऐसा, कि वो क्यों ऐसा मानता है, क्योंकि जीवन की जो मुख्य लक्ष्य है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उसके बारे में वो बहुत अज्ञानी रहता है। क्यों, कि भगवत प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति के लिए उसको तो क्या करना पड़ेगा, गुरु की प्राप्ति, अगर गुरु के पास शरण जाना पड़ेगा, गुरु के पास से फिर अगर वो प्रामाणिक तौर से अगर उसने अगर गुरु की शरण ली, उसके उपदेश अगर सुने और प्रामाणिक तौर से अगर भगवान की भक्ति की, तो भगवत प्राप्ति उसको ही प्राप्त हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो वापिस वो चक्कर, जिस प्रकार से वो चक्र है, जैसे कि हम यात्रा में बड़ा मेला रहता है, मेला में क्या रहता है, बड़ा एक चक्र रहता है, वहाँ पर ऐसा बड़ा ऐसा घूमता रहता है वो ऐसा। तो इसी प्रकार से एक चक्र जैसा 84 लक्ष योनि जो है उसमें वो भ्रमण करता रहता है, और भौतिक सुख जो है उसको ही सुख मानता है। जैसे कि हम बहुत बार ये उदाहरण को देखते हैं कि ये ऊंट जो रहता है कि मरुस्थल में जो कांटे वाले झाड़ रहते हैं, और कांटे वाले झाड़ को जो क्या क्या करता है, वो खाने को चाहता है, तो उससे उसकी जीभ जो है वो फट जाती है, और फटने के कारण उससे जो खून जो है आता है और उसको ही चबाता है वो। लेकिन उसको क्या लगता है कि यही सुख है, कितना ये है। दूसरा एक है, हम देखते हैं कि कुत्ता जो है वो क्या करता है, जो हड्डी जो है उसको चबाता रहता है, लेकिन हड्डी का जो कोना या कुछ रहेगा तो उसके जो उसका मुंह जो है किसी तरह से फट जाता है, उसको क्या लगता है, उसी में से, इसी के अंदर से आ रहा है, लेकिन खून किसका है, उसका ही है। यानी कि आनंद जो है खरा सच्चा जो सुख है उसको मालूम नहीं है, तो इसी में वो आनंद मानता है। और आगे है कि 84 लक्ष जो पशु और मनुष्य जो है, यानी कि उसके अंदर ही आता है, पशु मनुष्य 84 लक्ष योनि में सब आते हैं। तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क है, क्योंकि चक्र में तो घूमता रहता है वो। तो एक शास्त्र में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत पशु में समान। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों दिशा से उसका जीवन जो है चलता रहता है, अविरत चलता रहता है। लेकिन देखा जाए कि जैसे कि वृषभदेव शुरुआत में भी अपने पुत्रों को भी बताते हैं कि शुकर और श्वान के जैसा जीवन न व्यतीत करे, तो पशु यानी कि पशु ये श्वान और शुकर पशु, और उसके जैसा जीवन व्यतीत न होना चाहिए, तो वो धिक्कारते ऐसे जीवन को। तो किस प्रकार होना चाहिए जीवन? अभी मनुष्य जो है, मनुष्य को स्पेशल क्या दिया है? एक बुद्धि दिया है, और दूसरा क्या है? एक धर्म है, उसको पता चलता है कि अच्छा क्या है खराब क्या है, एक सारा सार जानने की विधि जो है वो उससे पता चल सकता है, यानी कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि वो उसको मालूम होना चाहिए कि मैं किस लिए हूँ, मेरा क्या उद्देश्य क्या है जीवन का। जैसे कि हम शुरुआत में जब भगवद गीता कोर्स रहता है 7 दिन का, उसके अंदर यही श्लोक रहता है कि पशु से मनुष्य किस प्रकार से उन्नति की स्थिति पर और चलता है ऐसा। तो निष्कर्ष क्या है इसमें कि धर्म के बिना मनुष्य किस प्रकार से है? एक पशु तुल्य है। पशु और मनुष्य देखा जाए अगर चार कार्य के लिए अगर वो भागदौड़ करता है, आहार निद्रा भय और मैथुन, इसके लिए अगर करता है तो क्या है? वो पशु ही है, खाली दो पैर का पशु, इतना ही फर्क है। और पशु को चार पैर हो जाएंगे, ये खाली बोलने वाला, चलने वाला, कर्म करने वाला, टाइम टू टाइम, खाली इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो मनुष्य के जैसा अगर जीना चाहता है, तो धर्म के जैसा अगर नीति जो है, शास्त्र के जैसा अगर चले, तो क्या हो सकता है? उसका उद्धार हो सकता है। और आगे जो बताया जाता है कि रूपात बताते हैं कि श्लोक में कि सकाम कर्मी किस प्रकार से व्यक्ति जो है कर्म करते रहता है, और कर्म करते करते क्या होता है कि माया का जो प्रभाव के अंदर आके वो बार बार दुख भोगता रहता है, हर बार दुख भोगता रहता है। जैसा कि यहाँ पर उसको वही लगता है कि ये सब शाश्वत है, और शाश्वत होने के कारण वो शाश्वत जैसे चीजों के बारे में वो सोचता रहता है। लेकिन ये जग कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम है, यानी कि यहाँ पर क्या है? दुख ही है। आलय, आलय यानी कि संग्रह, भंडार, तो यहाँ पर दुख ही दुख है। यहाँ पर सुख की अपेक्षा यानी कि करना यानी कि हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पर खाली दुख ही दुख है। और वहां पर क्या करता है, जैसे कि घर भी अगर बांधना है तो वो सोचता है उसकी जीवन की अवधि कितनी है, 40 साल 50 साल 70 80 100 साल ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्या है, अगर वो कोई भी प्लानिंग करता है कि वो करता है शाश्वत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो स्टैम्प मार दिया गया है। यहाँ पर कैसा है कि दुखालयम, अगर भवन भी बांधना है तो 200 300 400 500 साल तक अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो भी मैं कुछ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो शाश्वत होना चाहिए, लेकिन जीवन के साथ में उसका अंत हो जाता है। ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई कुछ काम की नहीं आती है, ऐसा बताया जाता है कि लास्ट में कौन सी पढ़ाई काम में आएगी कि भगवान का नाम, अंत नारायण स्मृति, ये मेन है। तो कहा जाता है अगर माया के बारे में बार बार वो फटकारता रहता है, मार खाते रहता है, मार खाते खाते वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में वो बार बार रिपीट 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 चलता रहता है। अगर उसके अंदर उसको गलती से अगर कहां पर अगर सुकृति रहेगी, अगर मिली होगी बाय चांस, तो क्या होगा, उसका किससे मुलाकात होगी, या साधु के साथ में कभी कभार उसकी मुलाकात होगी या मिलेंगे, और उससे क्या होगा, साधु से उसको ये पता चलेगा क्या गलत है और क्या सही, और उसके बाद आध्यात्मिक गुरु जो है यानी कि सच्चा यानी कि जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में जो है उसको पता लग सकता है। और आध्यात्मिक गुरु से क्या हो सकेगा, उसको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति से, अभी ज्ञान प्राप्ति हो गई तो क्या शुरुआत कैसी है उसकी, कि भगवान के बारे में श्रवण, श्रवण है, बाद में भजन, भजन यानी कि नामस्मरण, ये सब जो है, और सबसे ज्यादा हृदय परिवर्तन किससे अगर होगा तो प्रसाद, भगवान का प्रसाद। प्रसाद का अगर ये शॉर्ट फॉर्म है प्रसाद, प्रसाद का एक्चुअली लॉन्ग फॉर्म का है प्रभु का साक्षात दर्शन, यानी कि भगवान का जो है हृदय परिवर्तन अगर करना है तो क्या होना चाहिए, भगवान का प्रसाद जो है महाप्रसाद हर बार लेना चाहिए, उससे क्या होगा भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि साधु संघ, तो साधु संघ से उससे पीछे सुकृति, तो हम देखते हैं कि ऐसे शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार उसका जीवन व्यतीत होता है, पहला पूर्वाश्रम का और बाद में अगर साधु का या गुरु का अगर उसको संग मिलता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तो हम श्रीमद् भागवतम में बहुत अलग अलग कथाएं है, जैसे कि मृगहरि का कथा आ जाता है कि नारद मुनि के एक उपदेश से उद्देश्य, तो मृगहरि का जीवन जो है एक शिकारी का जीवन एक भक्त के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि साधु का संग, और वो क्या करता है उनको स्वीकार, वो स्वीकार करता है कि आप ही आज से गुरु है मेरे। वो बताता है कि अगर मैं ये मृगया, मृगया यानी कि क्या है, हर दिन शिकार करना, शिकार करना उसका उद्देश्य है। और नारद मुनि बताते हैं कि भाई ये अगर आप छोड़ दो, इससे अलावा भी जीवन का बहुत सारा उद्देश्य है, आपका जीवन का उद्देश्य अलग है। तो बोलता है अगर ये नहीं मैं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो नारद जी बताते ऐसा नहीं है, आप खाली करके देखो, करके देखो, बाद में मैं कुछ दिनों के बाद आपको मिलूंगा और आपको खुद को भी एक साक्षात्कार हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद पर्वत मुनि के साथ में जो भी आते हैं नारद मुनि, तो देखते हैं कि उसके मन में जो शिकार करता था जो व्यक्ति, और शिकार की उसकी एक स्टाइल होती थी, हर एक की अलग अलग क्या बोलते हैं ना ही रहती है, तो उसका क्या होता था, बाण मारना है लेकिन कैसा, उसको तड़पते तड़पते रखने का, खाली इस प्रकार से हाल हाल करके, जैसे कि अभी परिभाषा में हलाल बोला जाता है ना तो इस प्रकार से उसका जो विधि होता था। तो नारद जी बोलते थे कि ये जो है सब प्राणी जो है आपको जब तक उसका आखिरी श्वास है तो श्राप देते देते आपको वो त्याग देंगे जीवन, तो ऐसा मत करो। तो वो प्रयास करता है उस प्रकार से कि नारद जी ने जो बताया है उस पद पर वो चलता है और कुछ दिन के बाद अच्छा भक्त होता है, उसके मन में जीव के प्रति दया उत्पन्न हो जाती है, चलता भी है तो ऐसा उसके मन में इतनी दया भावना उत्पन्न हो, करुणा उत्पन्न होती कि मेरे पैर के नीचे चींटी भी नहीं आ जाए। तो ये किसका प्रभाव है, एक साधु का संग अगर उन्होंने किया कुछ क्षण के लिए और उन्होंने उसने पूरा सुना, जैसा उसने सुना उस प्रकार से उसने एप्लीकेशन किया, यानी कि उसने व्यवहार में लाया, उसका फायदा ये हुआ कि वो अच्छी तरह से एक भक्त बन गया। हमारे जो आचार्य यानी कि जो जो रामायणकार जो है उनका भी चरित्र अगर पीछे अगर देखा जाए तो इस प्रकार का है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि गुरु ये देखते नहीं कि किसका किस प्रकार से किसकी क्या योग्यता है, उनका प्रयास क्या रहता है कि सबको भगवान का नाम जो है सबको वितरित करना, और वो इतने शुद्ध हृदय के होते हैं इस कारण वो जो भी उनके संपर्क में आता है वो क्या होता है, पवित्र हो जाता है। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि सूरज की किरणें जो है, सूरज कभी अपने किरणों से यानी प्रकाश से भेद नहीं करता है, जैसा कि वो सूखा भी सूखे को भी यानी कि सूखे का तो सुखाता है वो, लेकिन गीला अगर है या कुछ कचरा है कूड़ा है कुछ भी है गंदा है कुछ भी है, ऐसा नहीं सोचता है कि ये गंदा है उसको मैं नहीं सुखाऊंगा या ये मैं परहेज है इसके लिए, तो वो ये नहीं देखता है, तो उसी प्रकार से साधु है, गुरु है, ये कभी देखते नहीं कि ये, वो खाली क्या देखते हैं कि जीव की स्थिति क्या है और वो उसको मैं किस प्रकार से ऊंचा जो है भगवान की सेवा में लगाऊ। तो अभी भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसके आगे हो जाता है कि गुरु जो है अभी जीवन में जो है अलग अलग टाइप के अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे क्या भौतिक आदमी अगर है, भौतिक में जैसे कि नॉर्मल जीवन जीता है तो उसके भी गुरु रहते हैं। जैसे कि काउंसलिंग, जैसे कि बोला जाता है कि एजुकेशन में मैं क्या करूँ, पढ़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, करियर किस टाइप का होना चाहिए, कौन सा मैं जॉब करूँ उस प्रकार से। इतना ही नहीं कि मेरा जीवन में मेरा प्रपंचिक जो है उस प्रकार का, और मैं किस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूँ, फाइनेंशियली मेरी पोजीशन क्या है, मेरा पैसा अगर है कि किसके अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ, कौन सी कंपनी है, कौन से शेयर है इसके अंदर, यानी कि अलग अलग जो लोग जो है ये अलग अलग क्षेत्र में क्या है, एक गुरु के समान है अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसके अंतर क्या है, अंतर है, क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है एक किताबी ज्ञान जो है और ये जीवन के अंत में क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है, कि जीवन के अंत में ये कुछ काम में आने वाला नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी की कितनी भी एक्सपर्टी हो लेकिन आखिरी जीवन में वो उपयोगिता नहीं होती। जैसा कि हम सुना है बहुत सबार एक उदाहरण कि एक नौका वाला है और एक उसके अंदर जो नौका चलाता है एकदम गांव का एक पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम गांव का ग्रामीण खेडूत है एकदम। तो एक उदाहरण हम देखते हैं कि वो उसके बारे में बताता है, ये आपको मालूम है क्या, दुनिया में ये मालूम है क्या सब, क्योंकि उसको भी टाइम पास चाहिए था कुछ देर के लिए, तो बताते रहता है। लेकिन क्या होता है कि एक हवा के झोंके जैसे भवंडर जैसा पूरा वहाँ पर साइक्लोन जैसा कुछ देर के बाद हो जाता है और नौका जो है इधर भीतर हो जाती है। तो एक ही वो क्वेश्चन करता है वो नौका वाला, साहब जी, क्योंकि उसने इतना कुछ देर से उसको इतना बताया रहता है कि वो उसको एक सर ही बोला जाता है, बाद में बोलता है साहब जी आप तो नौका तो डूबने वाली है तो आपको तैरने को आता है क्या? तो बोलता है मैं नहीं आता है। तो बोले देखो कितना सब आपका जो जितने आपने डिग्रियाँ ली सबसे पढ़ाई की लेकिन जीवन के अंत में ये कुछ काम की आने वाली नहीं है। आखिर क्या काम पे आने वाली थी? जो अगर आप तैरना सीखते थे तो आज क्या हो सकते थे, बच सकते थे। यानी कि ये जो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जीवन के अंत, जो जीवन के अंत में कौन सी पढ़ाई काम में आने वाली, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा एक है भौतिक दृष्टिया कि एक अशिक्षित यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अच्छी तरह से ज्ञानी बन सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा कैटेगरी नहीं रहता है। जैसे कि हम अगर स्कूल में जाएंगे तो जैसे कि उम्र अगर चली गई तो हमें जो पढ़ाई में नहीं लेंगे, बोले कि आपका अभी उम्र चला गया है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा है। यानी कि और दूसरा क्या है कि उसका कोई किस क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। जैसा कि एक संदर्भ आता है कि नारद पंचरात्र में शिवजी और नारद का संवाद है कि गुरु की अगर कृपा किसी को अगर मिलती है तो क्या हो सकता है कि ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। तो हम पहला ही देखा कि नारद जी जो है, नारद जी ने वाल्मीकि को जो एक वाल्मीकि भक्त बनते उनके मार्गदर्शन पे और उनसे बड़ा एक रामायण एक इतिहास बन जाता है आगे, प्रभु रामचंद्र का जो चरित्र है उनसे लिखा जाता है। कि ये हम देखते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन किसी यानी कि ज्ञान की ऐसी भौतिक चीज़ों की कोई ही नहीं है। दूसरा एक है प्रामाणिक तौर पे अगर हम गुरु को शरण जाते हैं तो रामायण पे दूसरा एक उदाहरण हमें मिलता है। मातंगे ऋषि के आश्रम में शबरी का एक उदाहरण है कि उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, फिर भी गुरु की आज्ञा है कि एक दिन राम आएंगे, और वो बताते नहीं कोई तिथि वगैरह से बताते नहीं है। अगर हमारे गुरु ने भी अगर हमको बताए तो हमको बहुत ही रहता है कि कौन से तारीख में आएंगे, क्या रहेंगे, इतना इतना सब अपडेट का सब। लेकिन वहां पर देखा जाए तो सालों साल बीत जाते हैं, और वो हर दिन यही सोचती है सूरज की किरणें ब्रह्म मुहूर्त पे उठेगी और पूरा एक झाड़ू पोछा करेगी, फिर फूल की जो है रंगोली सब करती थी, और जो फल जो है फल लेके आती थी, और उसका यही मकसद था कि मेरे गुरु ने बोला है कि प्रभु रामचंद्र आएंगे, भगवान आएंगे और उनका मुझे दर्शन होगा और मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। यानी वो बताते हैं कि आपको अगर जब दर्शन मिलेगा तो तुम क्या करेंगे, हम जहां जिस लोक में गए तो तुम भी आ सकेंगे। तो वो गुरु के शब्दों पर विश्वास करती है। तो ये हम देखते हैं कि आगे श्लोका में बताया गया है कि गुरु की प्राप्ति के बाद क्या होगा, कि भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा, और आकर्षण पैदा होने के बाद तो सीधी सी बात है कि सच्ची तरह से वो बुद्धिमान होता है। जैसे कि बताए भगवद्गीता के 7वें अध्याय में 19वां श्लोक है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि गुरु कृपे के द्वारा आध्यात्मिक रीत्या ज्ञान प्राप्त जो है उसको मिल सकता है। और ये जो बताया जाता है कि मनुष्य जन्म के बारे में बताया जाता है कि ये कितना दुर्लभ है, ऐसा बताया जाता है कि जैसा कि कोई अंधा है और वो पानी के अंदर स्नान कर रहा है, यानी और उसके हाथ जो है ऊपर पानी के ऊपर है ऐसे, और वो ताली बजा रहा है और ताली के अंदर जो क्लैपिंग कर रहा है और उसके अंदर कौवा आ जाए, कौवा, अभी कितना ये दुर्लभ योग है कि एक तो अंधा है उसको कुछ दिखता नहीं है, पानी में है, बाद में वो क्लैपिंग कर रहा है, ताली बजा रहा है, उसके अंदर कौवा, कौवा सब, ऐसा बताया जाता है कि सब पक्षियों में सबसे चालाक रहता है, ऐसा बताया जाता है, उसको एक ही आके रहता है, एकाक्ष बोला जाता है, लेकिन एक ही आके रहता है लेकिन सबसे चालाक है। हम देखते हैं हमारे गौशाला में कौवे को खाली पता चले कि ये मुझे पत्थर मारने वाला है, भगाने वाला है, तो उससे पहले उठ जाता है वो। तो लेकिन वो अंधे के हाथ में कौवा अगर उसने पकड़ा, कितना दुर्लभ है, कितना बड़ा योग है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन जो है उसी प्रकार दुर्लभ है, और इतना यानी कि दुर्लभ मनुष्य जन्म, यानी कि इतना दुर्लभ है, और ये दुर्लभ मनुष्य जन्म में हम अगर वही करेंगे जैसा कि कपिल देव अपने देववाती यानी माता को बताते हैं कि जीव जो है गर्भ में भगवान का हर बार वो स्मरण करता है और प्रार्थना करता है कि इसके बाद जो है मुझे आना नहीं है बाहर, मैं अभी इसके बाद जो है क्या करूँगा, खाली आपका भजन करूँगा बस। लेकिन जैसा ही वो बाहर आ जाता है वो देखता है कि सब लोग खुशी है, कुछ ताली बजा रहे, कुछ बाहर एटम बम फोड़ रहे, बच्चा हो गया, लड़का हो गया, हाँ, तो इतना खुशी से मारे सब, तो वो सब क्या होता है, माया से आवृत हो जाता, भूल जाता है कि अरे मैं खाली रोता हूँ अकेला ही, बाकी के लोग हंस रहे खाली, भूल जाता है पूरा। और जैसा कि आता है पूरे आशा आकांक्षा लेके, जैसा मुट्ठी बांध के ऐसा, और जाते टाइम क्या होता है, सब छोड़ के जाता है, सब यहाँ पर ही, यहीं पर छोड़ के जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे ऐसा होता है कि दो छुए रहते और एक छुआ दूसरे छुए को बोलता है, अरे तेरे तबीयत इतनी कैसी अच्छी हो गई, बोलता है मैं मुझे राज मालूम पड़ा है। बोला क्या राज है, बोला ये जो गोडाउन है उसके अंदर चावल है वो भी बासमती है, और उसके अंदर मैं जाता हूँ छोटा सा छेद है, उसका छोटा सा छेद है उसके अंदर जाता हूँ, बहुत कुछ खाता हो वहां पर प्रचुर मात्रा में दिन रात खाते रहो। फिर बोलता कुछ नहीं, बाद में मैं इतना बड़ा हो जाता हूँ। बाद में बोला तो बाहर कैसा आता है? बोला कुछ दिन पूर्व उपवास करना पड़ता है, उपवास करने के बाद फिर मैं बाहर आ सकता हूँ। लेकिन वो आनंद जो है खाने का बहुत है, यानी कि अंदर क्या है, जाते टाइम हमको इस टाइप का जाना है, सब यहाँ पर ही छोड़ के जाना है। तो ये जो है जीवन की परिभाषा जो बता रहा हूं मैं, कि सब यहां पर ही छोड़ के जाना है। तो क्या लेके जाना है? भगवान का नाम, हरिनाम लेके जाना है। और गुरु जो है, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु से अगर हमारा संग होता है, तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। यानी कि गुरु का अगर संग होता है, गुरु का अगर मार्गदर्शन होता है, तो क्या हो सकेगा, उसका जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। यानी कि गुरु का, यानी कि कृष्ण उसको मिलेगा और प्रसाद में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और भक्ति का जो है बीज उसके हृदय में जब ही बोया जाता है, तो उसकी भक्ति चालू हो जाती है और उसको आकर्षण जो है भगवान के प्रति हो जाता है। और उसका मार्ग जो है एकदम, जैसा कि अभी हाईवे जो है, अभी सबसे बड़ा हाईवे महाराष्ट्र में बन रहा है, कौन सा, नागपुर हाईवे, हाँ, एक्सप्रेस हाईवे, उसी प्रकार से, यानी कि कोई रुकावट नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, आराम से वो आपने जो नया जो है अपना जीवन जो है क्या कर सकता है, भगवान के प्रति, यानी कि मुक्ति भगवान के चरणों पे समर्पित कर सकता है, भगवान के धाम में जा सकता है। यानी कि निष्कर्ष यही कि भक्तिमय जीवन का वो प्रारंभ करता है गुरु के मार्गदर्शन पर। तो इससे क्या होगा, शुद्ध भक्तों के अगर मार्गदर्शन है, तो शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कि कुछ भौतिक स्थिति में आज पेपर में क्या आया, किसने कितना करप्शन किया, ये ऐसा नहीं, कभी उनका चर्चा नहीं होती है। उनका चर्चा क्या होगी, भगवत कथा होगी। भगवत कथा से क्या होगी, श्रवण से क्या होगी, हृदय में परिवर्तन धीरे धीरे होता रहेगा, और श्रवण के द्वारा क्या होगा, हृदय का शुद्धिकरण होता रहेगा, ऐसा है। और आध्यात्मिक जीवन की ये शुरुआत जो है वो उसके मुक्ति पथ पे है, वो जा सकती है। और दूसरा जो है कि विशेष जो है, आज का जो थोड़ा समय लेता हूँ, तो आज विशेष दिन है, एक अक्षय तृतीया, तो उसके बारे में, अक्षय यानी कि जिसका क्षय नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है। तो ये महाराष्ट्र में बताया जाता है शास्त्र में, 3.5 मुहूर्त जो है, 3.5 मुहूर्त जो है उसमें से एक ये आता है। तो 3.5 मुहूर्त कौन से है, एक गुड़ी पाड़वा है चैत्र, और दूसरा अक्षय तृतीया एक है आज का, तीसरा है दशहरा, और बीच का जो आधा मुहूर्त जो है दिवाली जो है कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, पाड़वा बोला जाता है मराठी में, तो उसके दिन। तो अक्षय तृतीया में पौराणिक आधार क्या है, अभी देखा जाता है, तो हमारे आज से चंदन यात्रा जो है अक्षय तृतीया ऐसे चालू हो जाती है, भगवान को चंदन लगाना चालू हो जाता है। दूसरा एक है कि हमारे शास्त्रों में इसका बहुत विशेष महत्व है, हमारे युग के जो परिवर्तन है, त्रेता युग की शुरुआत भी इसी से हुई। दूसरा है कि गंगा देवी के अवतरण के लिए कि सगर राजा ने कितने कष्ट किए, वह बाद में आगे जो है गंगा का अवतरण भी ये अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। और जो कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती की क्या बोलते हैं, जो एक दूसरे को मिलते हैं द्वारिका में, तो ये अक्षय तृतीया के दिन ही है। और अक्षय यानी कि कभी नष्ट न होने वाला, पांडवों का जो अक्षय थाली जो है, तो वो भी इसी दिन में मिला था कि और द्रौपदी का जो कुरुक्ष सभा में जो वस्त्र हरण हो रहा था, तो भगवान ने उसको अपने वस्त्रों द्वारा बचाया। तो ये भी एक विशेष भगवान ने संरक्षण किया, तो ये आज ही ये तिथि है। और दूसरा एक और है कि जो आचार्य है आदि शंकराचार्य, उन्होंने बहुत ही उनका एक फेमस, उन्होंने एक स्तोत्र लिख उन्होंने रचना की है कनक धारा स्तोत्र। ऐसा बताया जाता है अगर वो नियमित तौर से कर्मकांड में अगर कोई करता है तो लक्ष्मी की धन धान्य संपदा जो भी कुछ है वो मिल सकता है उसको। अगर दूसरा एक और एक आगे का है कि आध्यात्मिक तौर से देखे तो भगवान परशुराम का अवतरण भी आज के दिन भी हुआ, और एक विशेष सब वैष्णव जो जाते हैं हमारे जगन्नाथपुरी तो आज विशेष मुहूर्त रहता है, क्योंकि कोई विशेष कार्य करना है तो विशेष मुहूर्त का भी जरूरत रहती है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन से वो रथ का काम चालू करते हैं, यानी कि उसका लकड़े जो है परीक्षण करना ये सब आज से चालू हो जाता है मुहूर्त का हिसाब से। और हमारे जो आचार्य जो है व्यासदेव जो उन्होंने लिखित स्वरूप में पूरे शास्त्र लिखे तो उन्होंने आज से शुरुआत जो है महाभारत की थी। और कोषाध्यक्ष जो है देवताओं के कैशियर तो कुबेर जी उनको आज अध्यक्ष पद पे यानी कि कैशियर के पद पे उनको बिठाया था सब देवताओं ने मिलके। तो ये अक्षय तृतीया का योग है। और आज जो है अन्नपूर्णा देवी का भी आविर्भाव दिन है। तो इतने जो है अक्षय तृतीया का महत्व बताया जाता है। और ऐसा बताया जाता है आज कोई पूरा अक्षय तृतीया का पूरा दिन जो है सब मुहूर्त में कोई भी मुहूर्त जो है। और भक्तों के लिए बताया जाता है कि आज का अगर जप करेगा तप करेगा या ये हमारे यहाँ पर यज्ञ होता है अगर वहाँ पर जव का अगर कोई आहुति देगा समेधा देता है तो ऐसा बताया जाता है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति जो है बहुत ही उसके लिए उन्नति होती है। दान धर्म और पवित्र नदी का स्नान, जैसा कि नदी तो हमारे बहुत लंबी है लेकिन हम नदियों का जो नाम अगर लेके अगर स्नान करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि नाम से भी वो नदियाँ का आह्वान करके वो आ सकती है। तो इस प्रकार से हम और एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम बहुत बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी से हम एक कमिटमेंट करते कि हम आज से शुरू करेंगे। तो एक अच्छा मुहूर्त है सच में कि आज से अगर हम भक्ति में हैं तो और हम कैसे तरह से और उन्नत हो सकेंगे। और महाजनायन कथा सपनता यानी कि जैसे महाजन जो है उसी प्रकार से हम अनुगम करने का हम अगर उनके पग चिन्ह पर चलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बोल सकूंगा कि मैं कुछ परसेंट लेकिन शुरुआत में हो सकते हैं अच्छा प्रगति हो सकती है। ऐसा बताया जाता है कि ये मुहूर्त जो है वो बढ़ोतरी करता है अक्षय बढ़ता रहता है। इसलिए आज लोग जो बाहर सबसे ज़्यादा कल और आज सोने के दुकान में मिलेंगे गोल्ड खरीदते हैं, क्यों 2 गुना 4 गुना ऐसा बढ़ता रहता है। अगर आज हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हो सकता है कि साल भर हम भगवान का दर्शन करेंगे। अगर अच्छी तरह से जप करेंगे अच्छी तरह से हम शास्त्र का अच्छी शुरुआत करेंगे, जैसे कि देखो व्यासदेव ने भी महाभारत लिखने के लिए स्थिति आज के लिए यानी कि शास्त्र का जो लिखने के लिए, तो हम ये सोच सकते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व जो है कितना बड़ा हो सकता है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भागवतम की जय हो।